एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत। नमस्कार, संज्ञा का आज के अंक के लिए हमने चुनी है वर्ष 1986 की मशहूर गजल पिया नहीं जब गांव में आग लगे सब गांव में। चंदनदास की आवाज, निदा फाजली के बोल और चंदनदास का संगीत। मिठाई का व्यवसाय करने वाले संगीत विरोधी पिता के घर से भागकर ऐसे शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे गजल गायक चंदनदास। किस समकालीन गजल गायक की मदद से उन्हें मिला मुंबई में काम? क्या खास है इस गजल में जो इसे दूसरी गजलों से अलग बनाती है? इस गजल को गाते समय चंदनदास के किस अंदाज को देखने के लिए श्रोता हर शेर के खत्म होने का इंतजार करते? शायर निदा फाजली, जो मजहबी एकता को बढ़ावा देने वाली शायरों में गिने जाते हैं, इस गजल के किस शेर में मजहब शब्द का खूबसूरत इस्तेमाल किया उन्होंने? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन शुभ्रा ठाकुर का।
70 के दशक के उत्तरार्ध से गजलों की एक नई लहर चल पड़ी थी। फिल्मों के नायक रोमांटिक हीरो से बदलकर एंग्री यंग मैन बन जाने के बाद फिल्मी गीत हल्के होने लगे थे, उनमें शायरी कम होने लगी थी। शायद ये भी एक वजह रही होगी उन दिनों गैर फिल्मी गजलों के लोकप्रिय हो जाने की। तो 70 के दशक के अंतिम भाग से लेकर सैटेलाइट टेलीविजन के आने तक फिल्म संगीत के साथ ताल से ताल मिलाते हुए गैर फिल्मी गजलों का एक अपना दौर चला, जिस दौरान कई गजल गायक इस क्षेत्र में आए और अच्छा खासा नाम कमाया। मेहदी हसन, बेगम अख्तर, फरीदा खानम, गुलाम अली और भी कई समकालीन दिग्गज गायक तो थे ही, आगे चलकर 70 और 80 के दशकों में जो नाम मशहूर हुए उनमें शामिल हैं जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, तलत अजीज, आबिदा परवीन, भूपेंद्र, मिताली, पिनाज मसानी, हरिहरन, मनहर उधास, पंकज उधास, अनूप जलोटा, अशोक खोसला, घनश्याम वासवानी और चंदनदास। आज बातें चंदनदास की और उनकी गाई हुई एक मशहूर गजल की। पिया नहीं जब गांव में, पिया नहीं जब गांव में, आग लगे सब गांव में। गजल के इस मुखड़े को सुनते ही आप में से जो भी श्रोता उस दौर के गवाह रहे हैं उन्हें झट से इस गजल की याद आ गई होगी और दूरदर्शन के उस सुनहरे दौर का नजारा आंखों के सामने झूमने लगा होगा, है ना? आज की पीढ़ी के लिए चंदनदास और उनकी यह गजल भले अजनबी से हो, पर 80 के दशक के जमाने से ताल्लुक रखने वाले बच्चे, बूढ़े और जवानों के दिलों में चंदनदास के लिए अच्छी खासी जगह है। और क्यों ना हो, चंदनदास की आवाज में वो नरमी और मासूमियत है कि जिन्होंने भी उन्हें सुना सम्मोहित हुए बिना, उनकी आवाज से प्यार किए बिना नहीं रह सके। आज उनकी गाई इस गजल की बातें, लेकिन उससे पहले चंदनदास के पार्श्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें प्राप्त हुई दूरदर्शन के राज्यसभा टीवी चैनल से प्रसारित शख्सियत कार्यक्रम के साक्षात्कार से। चंदनदास का जन्म मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता का बिजनेस था, उनके मिठाई की प्रसिद्ध दुकान थी जिससे अच्छा खासा मुनाफा होता था। उनकी माँ एक गृहिणी थी, उनकी एक बड़ी बहन भी थी। इस तरह से 4 सदस्यों का छोटा सुखी परिवार था। लेकिन शायद कुदरत से परिवार की खुशियां देखी नहीं गई। चंदनदास के मात्र 2 वर्ष की आयु में उनकी माँ का निधन हो गया। पिता भी व्यवसाय में अत्यंत व्यस्त रहते थे। हालांकि उनकी बड़ी बहन ने उन्हें बहुत प्यार दिया, पर माँ की कमी नन्ही चंदन को खलती रही। वो बताते हैं कि छुटपन में वे माँ के प्यार के लिए तरसते थे। माँ की कमी उनके सगी मौसी भी कई बार पूरी करती थी। मौसी से ही उन्हें पता चला था कि उनकी माँ भी अच्छा गाती थी, जैसा कि मध्यवित्त बंगाली परिवार में होता है कि घर की लड़कियों को संगीत या नृत्य सिखाया जाता है। चंदन दास की बहन के लिए भी घर पर मास्टर जी आया करते थे, उन्हें रविंद्र संगीत सिखाने। अपनी बड़ी बहन को गाता देखकर उनका भी मन संगीत की ओर आकृष्ट होने लगा। खाली समय में बालक चंदन भी हारमोनियम पर बैठकर सुर साधने लग जाया करते। लेकिन उनके पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि चंदन बड़े होकर उनका बिजनेस संभाले, और इसी बात पर पिता पुत्र में घोर मतभेद था। चंदन जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनमें संगीत के प्रति लगाव और तीव्र होने लगा। अन्य मनस्क होकर इधर उधर भटका करते थे चंदन। कभी निकट के एक दरगाह पर जाकर अकेले घंटों बैठे रहते और कुछ गुनगुनाने लगते। उन्होंने ही बताया कि कई बार ऐसा हुआ कि दोपहर के खाने के समय उनके पिता उन्हें दरगाह से अपने साथ घर ले जाते, यह कहते हुए कि चलो खाने का समय हो गया है। इस तरह दिन बीतते चले गए। 14-15 वर्ष की आयु में वे अपने पिता के एक मित्र के साथ पिता को बिना बताए पटना चले गए और वहां पहुंचकर पिता को इस बात की सूचना दी कि अब वो संगीत में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। पिता ने गुस्से में अपने पुत्र से किनारा कर लिया। पटना में चंदन दास एक आजाद परिंदे की तरह अपने पंख पसारे और बहुत कम समय में उन्हें आकाशवाणी पटना में आकस्मिक गायक के रूप में काम मिलने लगा। रेडियो के माध्यम से उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी। लोग उन्हें जानने लगे, उनकी आवाज को पसंद करने लगे। पटना में ही उनका पहला स्टेज शो भी हुआ। 1976 में उन्हें दिल्ली चले जाने का मौका मिला, जहां उन्हें दूरदर्शन के नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले रंगारंग कार्यक्रम में गजल प्रस्तुत करने का मौका मिला। देश भर के लोगों ने उन्हें सुना, सराहा। दिल्ली में उनके शोज होने लगे। 1981-82 में गजल गायक तलत अजीज साहब दिल्ली गए थे प्रोग्राम के सिलसिले में। जिस गाड़ी में वे सफर कर रहे थे, उसके ड्राइवर से तलत अजीज ने कोई गाना वाना लगाने को कहा। ड्राइवर ने चंदन दास की गई गजल की कैसेट लगा दी। तलत साहब को आवाज छू गई और उन्होंने फौरन चंदन दास से संपर्क स्थापित किया, क्योंकि उन दिनों तलत साहब म्यूजिक इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और उस कंपनी को नए गजल गायकों की तलाश थी। उनके सुझाव पर चंदन दास बंबई गए। उनका चुनाव हुआ और उन्हें म्यूजिक इंडिया का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया गजलों के एल्बम्स बनाने के लिए। तलत अजीज उन दिनों अपने आप को स्थापित करने में लगे थे। ऐसे में एक अन्य संघर्षरत गायक का नाम रिकमेंड करना अपने आप में बड़ी बात थी। शायद इसी वजह से चंदन दास आज भी तलत अजीज का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। चंदन दास म्यूजिक इंडिया के साथ 10 साल तक जुड़े रहे और इस दरमियान उन्होंने बहुत सी गजलें गाई, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हुई और पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, उनके स्टेज शोज हुए। यूं तो उनकी गाई हुई बहुत सारी गजलें मशहूर हुई। सबसे अधिक ख्याति उन्हें जिस गजल से मिली वह थी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। यूं तो ये गजल महबूबा के लिए गाई जा रही है, पर चंदन दास के लिए जैसे इस गजल के साथ उनकी माँ की बात जुड़ी हुई है, जो उनके 2 साल की उम्र में उनसे बिछड़ गई थी। बशीर बद्र की यह गजल है और उनकी बहुत सी गजलें चंदन दास ने गाई हैं। फिर किसी दिन हम इन दोनों के संगम से बनने वाली गजलों की बात करेंगे। फिलहाल निदा फाजली की लिखी आज की गजल पर आते हैं। पिया नहीं जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में। यह गजल भी उतनी ही लोकप्रिय हुई जितनी नजी भर के देखा हुई थी। चंदन दास की गजल गायकी की एक खासियत यह भी है कि वे गंभीर किस्म की गजलें और हल्की फुल्की गजलें दोनों ही सहजता से गा लेते हैं। बोलों के लिहाज से पिया नहीं जब गांव में एक हल्की गजल है, जो गजल कम और एक आधुनिक गीत अधिक लगता है। गजल के भाव, उसके शब्द, उसका संगीत और चंदन दास की गायकी कुछ ऐसी है कि हर सुनने वाला इस गजल की ओर आकर्षित हो जाता है। इस गजल के शेर बहुत ही छोटे छोटे हैं, पर इतने असरदार कि सुनने वाले को अपना बचपन, अपनी जवानी की झलक मिल जाए। शायद यही वजह है कि यह गजल हर किसी के दिल के कोने में जाकर हमेशा के लिए बस गई है। 1986 में पहली बार रिकॉर्ड की गई इस गजल को दूरदर्शन पर बार बार देखा सुना गया। रेडियो पर भी यह खूब चली थी। यह लोगों को इतनी पसंद आई कि जैसे यह गजल चंदन दास की पहचान बनकर रह गई। उनका कोई भी जलसा इस गजल के बिना अधूरा था। स्टेज शो में जैसे ही चंदन दास इस गजल के मुखड़े से पहले की पंक्ति शुरू करते, श्रोता तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते। ये पंक्तियां हैं, बादल बरसा गली गली है झूलों के त्योहार, बिन साजन में किसे सुनाऊं पायल की झंकार, मैं क्या जानू किसने इसमें बांधा है ताबीज, आते जाते छेड़े मुझको बूढ़ा हर सिंगार। और इन पंक्तियों के बाद हारमोनियम पर जैसे ही पिया नहीं जब गाँव में ये धुन बज उठती, तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो जाती। पहले अंतरे के शेर के रूप में जब चंदन दास गाते, कितनी मीठी थी इमली साजन थी जब गाँव में, तो लोग वाह वाह कर उठते। चंदन दास भी इस गजल को उतने ही चाव से गाया करते थे। आग लगे पर भी अपना हाथ ऊपर करके फाड़ में जाए वाली भंगिमा किया करते थे। दर्शक और श्रोता उनकी इसी भंगिमा का हर अंतरे के अंत में इंतजार करते। पिया नहीं जब गाँव में इस गजल की कंपोजिशन चंदन दास ने ही बनाई है। अधिकतर गजलों में यही रवायत रही है कि शायर गजल लिखता है और गजल गायक उसकी धुन तैयार कर उसे गाता है। चंदन दास ने साक्षात्कार में बताया कि जैसे ही उन्हें कोई नई गजल मिलती है, वे गजल का मूड और भाव समझकर राग निर्धारित करते हैं और फिर उस राग को आधार बनाकर गजल को कंपोज करते हैं। पर इस अनोखी गजल की अगर हम बात करें तो इसमें कोई विशिष्ट राग की छाया तो नहीं मिलती, बल्कि लोक शैली प्रबलता से महसूस होती है। छोटे मीटर पर लिखी हुई इस गजल की धुन में चंदन दास ने लोक शैली, कव्वाली शैली और सूफियाना अंदाज को सम्मिलित किया है, जिस वजह से यह गजल इतनी रंगीन बन पड़ी है। पेटी और सारंगी के इंटरल्यूड्स और तबले का रिदम इस गजल के मेरुदंड के समान है। दरगाहों और मजारों पर जिस तरह का संगीत सुनने को मिलता है, इस गजल की धुन में भी वह बात नजर आती है। क्या पता चंदन दास अपने बचपन में जिस दरगाह में जाकर घंटों अकेले में बैठे रहते थे, वहीं से इस तरह के संगीत के बीज उनमें आए हों। जो भी है, इस गजल को कुछ ऐसा जामा पहनाया है कि बच्चे, जवान और बूढ़े सभी को यह बहुत बहुत पसंद आया। और आज भी जब हम इसे सुनते हैं तो एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर खिल जाती है। चार अंतरों के बाद जब यह गजल पूरी होती है, तब ऐसा लगता है कि काश दो तीन शेर और होते इसमें। इस गजल के शायर निदा फाजली साहब भारत के विभाजन से असहमत थे और उन्होंने सांप्रदायिक दंगों, राजनेताओं और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। दिसंबर 1992 के दंगों के दौरान सुरक्षा कारणों से उन्हें अपने दोस्त के घर में शरण भी लेनी पड़ी थी। मजहबी एकता पर लिखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस गजल का अंतिम शेर है, मन का सौदा मन के मोल, कैसा है मजहब गांव में, आग लगे सब गांव में। कितनी खूबसूरती से मजहब शब्द का प्रयोग उन्होंने इस शेर में किया है। निदा फाजली साहब उन शायरों में से हैं जिन्होंने अपने आप को हर जॉनर में बखूबी ढाला है। अदबी शायरी हो, गैर फिल्मी गजलें हो या फिल्मी गाने और फिल्मी गजलें, हर जगह उन्होंने अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उम्दा काम किया है। इस गजल में भी कितने कम कम शब्दों में उन्होंने गहरी से गहरी बात कह डाली है।
और यहाँ आकर पूरी होती है एक इट्स ऑफ सनी की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का था, वाचन स्वर शुभ्रा ठाकुर का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सॉफ सैनिक
रेडियो प्लेबैक इंडिया।